हरिशरणम। भक्त बांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा से हम आप सब परम पवित्र भारत वर्ष में देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोच्च फल सत्संग भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के परम पावन मंगलमय चरित्र का हम लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी के आविर्भाव से लेकर के काशी में विद्याध्ययन और विद्याध्ययन की पूर्णता के बाद पुनः गुरुदेव का दर्शन करने के लिए चित्रकूट प्रस्थान। शिक्षा गुरु तो पहले ही अंतर्धान हो चुके थे, दीक्षा गुरुदेव का भी अंतर्धान हो जाना और भगवद इच्छा से गोस्वामी जी का अपनी जन्मभूमि पर निवास और विवाह और पुनः 5 वर्ष बाद ग्रह त्याग। ग्रह त्याग के पश्चात प्रयाग में पुनः विरक्त वेश ग्रहण करना और इसके बाद संपूर्ण भूमंडल का संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण आसेत हिमालय तक मानसरोवर आदि सर्वत्र विचरण दर्शन और पुनः काशी आगमन और काशी में श्री हनुमान जी का प्रथम दर्शन और श्री हनुमान जी के द्वारा यह आदेश कि आपको श्री राम दर्शन की व्याकुलता है तो आप चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें, आप चित्रकूट पधारें, वहां निवास करें, वहां आपके अभीष्ट की पूर्ति होगी। देखो जो बहुत चतुर होते हैं वो थोड़े में ही बहुत कुछ मांग लेते हैं, बहुत थोड़े में, और जो मूर्ख होते हैं उनके समक्ष कोई अवसर आवे भी मांगने का तो वे उल जलूल चीजें मांग लेते हैं और उनका मांगना भी व्यर्थ हो जाता है। क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इसका विवेक अत्यंत आवश्यक है, अपेक्षित है। अभी हम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की रचना के माध्यम से भी कुछ चरित्र का स्मरण कर रहे थे। भक्तमाल ग्रंथ के मूल रचयिता नाभा गोस्वामी जी हैं जिनके 56 छंद का हम लोग नित्य उच्चारण करते हैं और श्री नाभा जी महाराज ने अंतर्धान होने के नित्य लीला प्रवेश के 100 वर्ष के बाद श्री प्रियादासी महाराज को दर्शन हुए, भगवत धाम गमन के 100 वर्ष बाद, और आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल के ऊपर आप टीका लिखें। देखिए श्री नाभा गोस्वामी जी श्री रामानंद संप्रदाय के द्वाराचार्यों में से एक द्वाराचार्य हैं। नाभा जी का भी द्वारा, जैसे मलुक जी द्वाराचार्य, अग्र जी द्वाराचार्य, नाभा जी द्वाराचार्य, ये सब द्वाराचार्य हुए। तो और जिस समय नाभा जी ने आज्ञा दी है टीका की उस समय श्री रामानंद संप्रदाय में भी बड़े बड़े सिद्ध थे, एक से एक प्रतापी थे, लेकिन श्री नाभाजी महाराज ने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हुए और उन्हीं के प्रशिष्य मनोहर दास जी महाराज और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी महाराज माने महाप्रभु की जी की चौथी पांचवी पीढ़ी में प्रियादास जी शिष्य परंपरा। प्रियादास जी महाराज को आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः नाभाजी इस कोटि के महापुरुष हैं जिनमें सांप्रदायिक भेद तो है ही नहीं, दुराग्रह भी नहीं है। कई बार दुर्भाग्य से साधकों में संप्रदाय का विशेष दुराग्रह हो जाता है और दुराग्रह के कारण उनका किसी एक विशेष मत में पक्षपात हो जाता है और फिर वह पक्षपात इतना उग्र रूप धारण करता है कि उन्हें भगवान में ही भेद दिखाई पड़ने लग जाता है। कहां तो साधक को पहुंचना यहां तक है कि अपने आराध्य उपास्य को सारे जगत में देखे हैं, उनसे भिन्न कुछ दिखे नहीं, और कहां उसे भगवान में ही अंतर मालूम पड़ने लग जाता है। फिर भगवान के भक्तों में बड़े छोटे की भावना जगने लग जाती है। फिर वह कई बार उनकी किसी की प्रशंसा करता है तो किसी की निंदा करने लग जाता है। इससे जाने अनजाने में उससे महान भागवतापचार बन जाता है और वह भागवतापचार वैश्वापराध भक्तापराध भगवत प्राप्ति के पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवत प्राप्ति के पथ के पथिकों का यह परम कर्तव्य है कि सबसे पहले वह दुराग्रह शून्य हो जाएं, न तो भगवान में भेद रखें और न भगवान के प्यारे भक्तों में भेद रखें। ठाकुर ठाकुर सब एक और भगत भगत सब एक। कामधेनु गौ माता, हम लोग जो हमारी भारतीय गाय है यही कामधेनु है। गाय के चार थन होते हैं, चारों में से दुग्ध निकलता है। चार दोहने वाले हों, चार पृथक पृथक दोहनी हो और पृथक पृथक थनों से दूध दुहा जाए, तो अब आपसे पूछा जाए कि उन चार थनों में से चार तरह का दूध चार पात्रों में रहेगा। दोहने वाले अलग हैं और पात्र भी अलग है, पर गाय तो एक है ही। तो उसके थन भले ही चार हैं पर उनमें दूध चारों में एक जैसा है, ऐसे ही समझना चाहिए। भक्ति महारानी कामधेनु गैया हैं और यह आचार्य चरण ही उनके थन हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना वाले प्रेमी जिज्ञासु यही वत्स हैं और वे अपने निष्काम हृदय रूपी पात्र में उस रस का संचय करते हैं, दूध का प्रेम का संचय करते हैं। वह चार तरह का नहीं होता, एक जैसे। गैया के चार थन हैं पर चार थन होने से चार तरह का दूध नहीं हुआ, एक ही तरह का दूध हुआ। देखो वक्ता के चित्त में भी संप्रदाय भेद और किसी विशिष्ट एक संप्रदाय का विशेष आग्रह नहीं होना चाहिए। आप लोग कहेंगे क्यों? यदि ऐसा होगा तो उसके द्वारा भी अपराध होगा। हम लोग जब भगवान के मंगलमय चरित्र को कहने बैठते हैं अथवा भगवान के भक्तों के चरित्रों को कहने बैठते हैं तो उस समय जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं यही श्रोता नहीं होते हैं। जो हमारे सम्मुख बैठे हैं केवल इतने ही श्रोता नहीं है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये सब श्रोता हैं, रजिस्टर्ड श्रोता, पक्के श्रोता। कहीं भी कथा हो सबसे पहले उपस्थिति इनकी होती है। अब ये श्रोता विराजमान है सबसे पहले, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में पहले भागवतों का स्मरण, फिर पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो सब विराजमान है, उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो भी अपराध हो जाएगा, इसलिए कुछ दो चार प्रमुख नामों का स्मरण करके, आदीन कह करके सबको नमस्कार, और फिर उनके चरणों में प्रणिपात प्रणाम। अब वक्ता कथा कहने बैठा, उसका विशेष भाव श्री राम जी के प्रति है। अब राम जी का चरित्र तो खूब बढ़िया से गाया, खूब महिमा गाई, और कथनचित दुर्भाग्य से उसका भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति भाव नहीं है, और श्री कृष्ण की महिमा को कहते समय या गाते समय उसने कुछ ऐसी बात भी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, जिससे भाव नहीं अपितु अभाव ही सिद्ध हुआ। तो अब देखो, प्रकट में तो वैष्णव बैठे हैं, उनको पीड़ा तो पहुंची, पर आप विचार करें श्री कृष्ण भगवान के संबंध में, उनकी लीला के संबंध में कोई अन्यथा बात वाणी से निकल गई तो उस सभा में श्री उद्धव जी भी विराजमान, जो भगवान के प्राण प्यारे सखे, भगवान के नित्य पार्षद, उद्धव जी के चित्त में कितनी पीड़ा होगी, अरे राम राम, हम तो कथा सुनने आए थे, हमारे प्रभु के संबंध में इसने क्या कह दिया। उद्धव जी जैसे भागवत के चित्त में पीड़ा पहुंच जाए तो आप विचार करें, वक्ता के हृदय की भक्ति सुरक्षित रहेगी, उसे भगवत प्राप्ति होगी। अथवा श्री राम कृष्ण की महिमा तो खूब गाई, और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को, ये तो ऐश्वर्य प्रधान है, अमुक है तमुक है, और माधुर्य इसमें कहाँ है, ऐसा कह करके यदि भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का उसने अनादर कर दिया तो श्री ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, उन्हें कितनी पीड़ा होगी। इन भक्तों में अनेक चतुर्भुज स्वरूप के भी तो उपासक हैं कि नहीं, वे अपने आराध्य की उपेक्षा को सहन नहीं कर सकेंगे, उनके चित्त में पीड़ा पहुंच जाएगी। राम जी के प्रति भाव नहीं है, राम जी के लिए कह दिया कि वो तो मर्यादा में ही बंधे रहे, उनमें प्रेम कहां आया, उनमें प्रेम प्रकट नहीं हुआ। और श्री हनुमान जी महाराज कथा में बैठे, उन्हें कितनी पीड़ा होगी, वो तो भला होए कि हनुमान जी को गुस्सा ना आ गया, रावण जैसा त्रिलोक विजयी तो एक घूसा नहीं झेल पाया, वक्ता बेचारा कहां तक झेलेगा हनुमान जी का प्रहार। इसलिए संप्रदाय जो है वह एक उपासना पद्धति है, हमें एक निश्चित उपासना का मार्ग मिल गया, इस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलते हुए आप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें, बस इसी का नाम है संप्रदाय। बड़ा पवित्र शब्द है संप्रदाय, अपवित्र शब्द नहीं है, बहुत पवित्र शब्द। अब जो परंपरा भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुई है उस पर हम निष्ठापूर्वक चलते तो है नहीं, और अन्य उपासनाओं की निंदा करते हैं, उनकी उनका तिरस्कार करते हैं, तो इससे लाभ तो कुछ होना नहीं है, हानि ही है। और भक्तमाल ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्तमाल ग्रंथ में केवल राम जी के भक्तों के चरित्र नहीं, केवल नारायण के भक्तों के चरित्र नहीं, केवल श्री कृष्ण भक्तों के चरित्र नहीं, भक्तमाल में तो 2400 अवतारों के भक्तों के चरित्र हैं, मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह आदि, इन स्वरूपों के जो उपासक हैं उनके भी चरित्र हैं। और महाराज ऐसे चरित्र भी हैं जो इन 2400 अवतार का नहीं, भगवान के इन सभी स्वरूपों का नहीं, ऐसे ही प्रेमी भक्तों का चरित्र है जो कहते हैं
जे अवतार कदंब भजते हैं, जे अवतार कदंब कुटुंब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ उमगी तजत मर जादा, बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन जुदिए, मेरी प्राण नाथ श्री श्यामा, मेरी प्राण नाथ श्री श्यामा,
शपथ करो तृण छिए। ऐसे भी भक्तों के चरित्र हैं जो इन 24 अवतारों में 24 स्वरूपों में से किसी में उतने आशक्त नहीं जितना वृंदावनेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी रसेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के चरणों में अनुरक्त हैं। श्री हरिवंश जी कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ाने वाले, जे अवतार कदंब भजत हैं, कदंब माने समूह, धरिद्र व्रत जुहिए, लेकिन हमारे वृंदावन में आकर के जब वन विहार का रस पीते हैं तो सब भूल जाते हैं, लेकिन हम भी वन विहार का रस पीते पीते हमारा विशेष आग्रह श्री जी के चरणों में है। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपत्ति तहां की करत खवासी। नाभाजी के चित्त में संप्रदाय का भेद रंच मात्र नहीं, इसीलिए परवर्ती काल में अनेक लोगों ने भक्त चरित्र लिखे, लेकिन कोई न कोई आक्षेप उनके प्रति आ गया। नाभाजी के भक्तमाल पर आज तक वैष्णव संप्रदाय में तो आक्षेप नहीं ही है, वैष्णव संप्रदाय से जो इतर संप्रदाय हैं वे भी एक स्वर से श्रद्धा पूर्वक भक्तमाल जी के महात्म्य को स्वीकार करते हैं, भक्तमाल ग्रंथ की महिमा को स्वीकार करते हैं, सबकी श्रद्धा है। कुछ तो ऐसी है भैया जी कि जिनके संप्रदाय के संतों का नाम ही नहीं आया उस ग्रंथ में, वे लोग भी भक्तमाल ग्रंथ के भक्त हैं। शंकराचार्य का चरित्र लिखने लगे नाभाजी महाराज, आदि शंकराचार्य का, तोले कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। कलयुग धर्म, एक एक शब्द देखिए, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट, उत्श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड आदि, विमुखन को दियो दंड ऐची सन मार्ग आने। उनका चरित्र लिखते हैं। और परम धर्म प्रतिपाल को सन्यासी ये मुकुटमणि, एक छप्पे में कहते परम धर्म प्रतिपाल को सन्यासी ये मुकुटमणि, परम धर्म का प्रतिपालन करने में ये सन्यास परंपरा के महानुभाव श्री शंकराचार्य जी की पवित्र परंपरा के ये यति वृंद, परम धर्म प्रतिपाल को सन्यासी ये मुकुटमणि, उनको भक्तों में भी मुकुटमणि कहा, भक्तों में भी मुकुट और मुकुट में भी मणि। और कितने ऐसे भक्तों का भी चरित्र नाभाजी ने लिखा है जिन भक्तों का वस्तुतः किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, ऐसे भक्तों का भी चरित्र लिखा। आप लोग कहेंगे ऐसे भगत बताओ, दो चार तो गिनाओ। अब खींचतान करके कोई भले कह ले कि वो अमुक हमारे संप्रदाय में थे, लेकिन एक उदाहरण आपको देते हैं। सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे। अब सिलपिल्ले बाई का चरित्र है, विचार करके बताओ किस संप्रदाय की है सिलपिल्ले बाई। अरे विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, श्री राम सहस्र नाम, किसी सहस्र नाम में भी सिलपिल्ले नाम नहीं है। आपने पढ़ा किसी सहस्र नाम में सिलपिल्ले नाम? और दो बाई थी, एक जमींदार की बेटी थी और एक राजा की बेटी थी। दोनों में मित्रता थी, दोनों खेल रही थी और महाराज एक संत जी महात्मा वे विचरण करते हुए जमींदार के घर आए। जमींदार संत से भी थे, घर में महात्मा रुके थे। वो महात्मा सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करके अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे तो बालक कुछ नया होते हुए देखते हैं तो उनमें कौतूहल होता है, वो बैठ जाते हैं और फिर उनकी विशेष भक्ति प्रसाद में ही होती है। बालकों की प्रतीक्षा इसीलिए करते हैं कि कब शंख बजे, कब घंटा बजे और प्रसाद मिले। चरणामृत तो बेचारे ले लेते हैं पर चरणामृत में उनका विशेष अनुराग नहीं रहता है, उनका विशेष अनुराग तो प्रसाद में ही रहता है। वो बालक प्रथम अधिकारी हैं प्रसाद के, इतने प्रेम से प्रसाद लेते हैं बालक। गांव में मंदिर हो देखो, चाहे जैसी ठंड पड़ रही हो घड़ी घंट की आवाज सुनती बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे नाक पहुंचते जाएंगे प्रसाद लेते जाएंगे। छोटे गांव के दृश्य देखे हुए दृश्य बता रहे हैं। और प्रसाद लेकर के फिर इधर कर लेंगे, इस हाथ में कर लेंगे, फिर पूछ लेंगे, फिर कहेंगे हमें नहीं मिलो महाराज प्रसाद, हमें लाओ। प्रसाद द्वारा हाथ भी फैला देते हैं और कई बार प्रसाद बांटने वाले पुजारी जी पंडित जी कहेंगे मिल तो गया प्रसाद, द्वारा द्वारा मत लेना, तो कहेंगे हमारी माता जी का दे दो, हमारे पिताजी का दे दो, हमारे भैया जी का दे दो। वो दो चार लोगों के नाम से अलग अलग भी ले लेते हैं प्रसाद। और फिर आत्मा में अभेद है, लगता है ये ज्ञान उनको जन्म जाते ही होता है। आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा है, बस इस ज्ञान में स्थित होकर वो सबके नाम का प्रसाद ही पा जाते हैं। तो बालकों का प्रसाद में बड़ा अनुराग होता है। तो वो बाबा जी रुके थे, पूजा होती थी, घड़ी घंट बजता तो प्रसाद के लिए बालक एकत्रित हो जाते और उन बालकों में वो दो कन्याएं भी आ जाती। पर उनका कोई पूर्व का संस्कार बहुत अच्छा था इसलिए वे प्रसाद के पूर्व भी आ जाती और भगवान की पूजा को देखती। अब वे एक दिन मचल गई कि ये ठाकुर जी हम लेंगे, पूजा हम करेंगे। उनको लगा ये खेल सबसे अच्छा है। अब कोई भी महात्मा छोटे छोटे अबोध बालकों को अपनी ठाकुर सेवा कैसे दे सकता है। बालिकाओं ने खाना पीना बंद कर दिया। अंत में जमींदार ने आग्रह किया महाराज दे दिया जाए। अरे बोले ये आज खेल 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 में पूजा करेंगी, कल नहीं करेंगी तो अपराध किसके सिर पे जाएगा। तब जमींदार बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा ऐसा करो इनको कुछ देकर बहका दो, पूजा करेंगे तो ठीक है, नहीं करें तो अपराध नहीं लगेगा। वो नदी में स्नान करने गए और दो पत्थर के गोल गोल काली काली शिलाएं ले आए और ला करके उनको सुंदर पहले ही जल्दी स्नान ध्यान करा के और बढ़िया से सुगंधित लगा करके दिव्य तिलक स्वरूप बना करके तुलसी दल पधरा करके उनकी सेवा पूजा कर दी। और उन्होंने ठाकुर सेवा मांगी तो वही दो शिलाएं उठा करके दे दी। उन कन्याओं ने पूछा कि बाबा इन हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है? बोले सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम है? ऐसी कह दिया, विनोद में ही कहा होगा सिलपिल्ले भगवान इनका नाम है। अब देखो उनकी अलग से कोई किसी संप्रदाय की दीक्षा नहीं है, न कोई उपासना की पद्धति बताई, केवल शिला दे दी और नामकरण कर दिया सिलपिल्ले भगवान। तो कहा बस इसी का जप करो, इन्हीं की पूजा करो, भगवान कृपा करेंगे। अब सर्वरूप सर्वमय भगवान तो है ही है, वे सब में विराजमान है। भावना से जहां पूजा करो वहीं भगवान विराजमान है। सर्वगत सर्वरूप सर्वमय तो है ही है ठाकुर जी, और जितने नाम हैं सब भगवान के नाम हैं। भगवान से भिन्न कोई नाम नहीं और भगवान से भिन्न कोई रूप नहीं। सिलपिल्ले नाम से ही सिद्धि होगी दोनों वक्ताओं का, चरित्र वर्णन में भक्तमाल ग्रंथ में जिमीदार की सुता का चरित्र वर्णन करते हुए प्रियादासी ने लिखा है कि जमींदार का भाई था और भाई से बड़ा हितैषी भी नहीं होता और भाई से बड़ा शत्रु भी नहीं होता। उसकी अपने जमींदार बड़े भाई से शत्रुता थी और शत्रुता में उसने षड्यंत्र रच करके कुछ डकैतों की सहायता लेकर के अपने भाई के घर पर डकैती पड़वा दी और डकैती में सारा सामान मूल्यवान घर का सामान चला गया और उसमें उस जमींदार की बेटी के ठाकुर जी का जो संपुट था उसी सामान में उसका ठाकुर सिंहासन भी चला गया। अब घर में इतनी भारी चोरी भई है, डकैती भई है, उसकी पीड़ा सबको थी पर इस कन्या के चित्त में कोई पीड़ा नहीं। उसके चित्त में तो सर्वाधिक पीड़ा इस बात की थी कि हाय रे हाय, हमारे सिलसिले भगवान चले गए और मैं उनके बिना जी नहीं सकती, मैं तो प्राण ही त्याग दूंगी। रुदन करने लगी, हा सिलपिल्ले हा सिलपिल्ले कह करके रुदन करती। पिताजी ने कहा बेटी कुछ खाओ पियो। मैया ने कहा बोले नहीं, हम तो सिलपिल्ले भगवान के बिना जी नहीं सकती। पता चल चुका था कि डकैती में मेरे भाई का ही हाथ है। जमींदार ने कहा कि बेटी देख, तेरे चाचा ने ही डकैती दलवाई है, तो तू तो कन्या है, बालिका है, तेरे प्रति तेरे चाचा का भी सौहार्द होगा, इसलिए तू खुद उनके घर में चली जा और ठाकुर जी मांगला, क्योंकि तेरे ठाकुर जी वहीं गए हैं। अब ये पहुंच गई वहां, रोने लगी, चाचा जी हमारे सिलसिले भगवान हमको दे दो। अब वो ठाकुर जी दे देते हैं तो चोरी सिद्ध हो गई कि नहीं, डकैती सिद्ध हो गई। पहले तो उन्होंने डांट डपट दिया, बाद में जब देखा कि बहुत रो रही है, चाचा जी दया करो, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, मेरे सिलपिल्ले भगवान हमको दे दो, तो चाचा जी ने कहा कि तेरे हृदय में सिलपिल्ले भगवान के प्रति इतना प्रेम है, तू वहां घर से रोते रोते यहां तक आ गई तो तेरे सिलपिल्ले भगवान तेरे प्रेम का इतना भी आदर नहीं करते, जो तू यहां तक चल के आएगी वो तेरे पास नहीं आ सकते। यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो पुकार ले, वे यदि हमारे घर में होंगे तो तेरे पास चलकर आ जाएंगे। मेरे घर में तो वस्तुतः तेरे ठाकुर जी नहीं है, ये चाचा ने कहा। और महाराज जैसे ही चाचा ने कहा, अब तो उसकी छाती विरह से फटने लगी। उसने कहा हे सिलपिल्ले भगवान, बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। विराज तो जैसे ही सिलपिल्ले भगवान को पुकारा, कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी का की जो पिटारी थी, ठाकुर जी का सिंहासन, वो अपने आप उठ करके आया और उस कन्या की छाती से ठाकुर जी लग गए। अब ये बहुत बड़े चमत्कार की बात थी, ठाकुर जी छाती से आकर चिपक गए। अब तो वह जो चाचा था वह भी चरणों में पड़ गया अपनी भतीजी के, सब आवाक रह गए उसके प्रेम को देख करके। अरे मेरे बड़े भाई की पुत्री इतनी बड़ी भक्ता है और मैं इस प्रकार का व्यवहार करता हूं। उसका हृदय आत्मग्लानी से भर गया, बड़े भैया के चरणों में पड़ करके क्षमा मांग ली, सारा सामान लौटा दिया। ये उसका चरित्र है। और राजा की सुता का चरित्र है, राजकन्या का चरित्र है कि उसका विवाह एक पड़ोसी राजा के राजकुमार से हुआ और बारात लौट करके विदा होकर जा रही थी और ये राजकन्या अपनी गोद में सिलपिल्ले भगवान को रखी थी और निरंतर उन्हीं को देख रही थी। एक सरोवर के तट पर थोड़ी देर के लिए पड़ाव, क्योंकि बीच में कहीं विश्राम होता ना, पड़ाव रुका तो दुल्हा ने कुछ अपने नवोढ़ा वधु से बातचीत करना चाहिए, पर उसका 16 आना ध्यान तो अपने सिलसिले भगवान में था। उसने विचार किया, इसने एक बार भी मेरी ओर देखा नहीं, मुझसे बातचीत तक नहीं कर रही है, ये कैसी है तो अपूर्व रूपवती, क्या बात है।